ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कॉन्ट्रास्ट बताया है। बाबा आकर क्या करते हैं और रावण क्या करते हैं, कितना अंतर है। बाबा क्या करते हैं और रावण क्या करते हैं। बाबा का ठिकाना है पर रावण का कोई ठिकाना नहीं है, कोई उसका घर नहीं है रावण का। तो जैसे उसका कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो वो जब आता है तो क्या करता है, सबको भटकाता है। जिसका कोई घर घाट नहीं होता है तो वो तो भटकता ही रहेगा। खुद का घर नहीं है, घाट नहीं है, तो खुद भी भटकेगा, दूसरों को भी भटकाएगा जो भी उसके साथ होंगे। तो रावण आकर क्या करता है, सबको भटकाता है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग है भटकने का मार्ग। कहाँ जाना है, क्यों ये कर रहे हैं, क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं, बस अंधविश्वास के वश करते हैं। और बाबा का तो ठिकाना है, बाबा को तो घर है, परम धाम उनका घर है। तो जब बाबा आते हैं तो ठिकाने का पता बताते हैं और ये भी कहते हैं कि अब तुमको वहां चलना है, अब तुम्हारा भटकना बंद हो जाना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में दर दर भटकते हैं, इसलिए गीत भी है ना, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। हाँ, ऐसे गीत भी बजाते हैं। तो अभी तो हमें मंजिल का भी पता चला है, ठिकाने का भी पता चला है। मंजिल कौन सी है हमारी, परम धाम, घर जाना है, घर जाना है। याद की यात्रा हम किस लिए करते हैं, क्योंकि घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो ठिकाना हो गया नई दुनिया जहां हमें फिर रहना है, पाठ बजाना है, पर पहले घर जाना है। तो ठिकाना भी बताया, घर का रास्ता भी बताया बाबा ने, और फिर कहाँ जाकर के रहना वो भी बताया है। लेकिन रावण का काम क्या है, भटकाना। और रावण भटकाता भी है और जो भटकते हैं वो फिर दूसरों को भी भटकाते हैं। तो भक्ति मार्ग में हम कितने भटके। अब बाबा ने ठिकाना दिया है तो भटकना बंद हो गया। तो आज बाबा ने बाबा क्या करते हैं और रावण क्या करता है ये अंतर बताया। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 30/12/2024 है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनना है। पानी के स्नान से नहीं, आत्मा की बैटरी पानी के स्नान से भरपूर नहीं होगी, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं, भी तो आ रहा है ना कुंभ मेला, महाकुंभ 12 साल के बाद आता है। और इस बार सुना है ये महाकुंभ जो आ रहा है जनवरी में, ये बड़ा टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। कई ऐसी जो विज्ञान की इतनी बातें हैं उस अनुसार ये मेला होगा। बहुत सारी बातें सुनाते, टेक्नोलॉजी कैसे होगी कुंभ मेले में, तो बहुत नवीनता होगी। और बता, 1 करोड़ लोग रोज आएंगे, 1 करोड़ लोग। तो इतने जितने दिनों तक मेला चलेगा उतने करोड़ लोग मेले में आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कोई मेला अगर होता है तो ये कुंभ मेला होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, पर पानी के स्नान से तो नहीं सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है और वो क्यों भटकाता है? क्यों रावण भटकाता है? कौन भटकाता है? रावण, पर क्यों भटकाता है? उत्तर, सभी को भटकाने वाला रावण है। क्यों भटकाता है? क्योंकि वो खुद भी भटकता है, उसका ही कोई ठिकाना नहीं है तो दूसरों को क्या ठिकाना देगा। क्योंकि वो खुद ही भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं है। हाँ, सबके घर में बैठा हुआ है ना, तो उसका अपना कोई घर नहीं है, सबके अंदर वास करता है रावण, भगवान नहीं। रावण का कोई बाबा नहीं कहेंगे, रावण को कोई पिता नहीं है। हम आत्माओं को तो पिता है, और पिता हमको ठिकाना बताता है, तो रावण का कोई न पिता है जिसने रावण को ठिकाना दिया है, न वो किसी और को देता है। रावण का कोई बाबा नहीं कहेंगे, बाप तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। बहुत भटक गए न बच्चे, तो इसलिए ठिकाना देने बाप घर से आते हैं। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए हैं, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। जो पहले पहले जुदा हुए वही फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, मधुबन में आते हैं बाबा के सामने मुरली सुन रहे हैं, तो मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे, निश्चय है हमें। वो आए हैं हमको घर साथ जरूर ले जाएंगे। वो आत्माओं का घर है ना, तुम बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, क्योंकि बिना गुलगुल बनाए हम घर कैसे जाएंगे, है ना? तो इसलिए बाबा पहले आके गुलगुल बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो गुलगुल बनाते हैं। अब गुलगुल बनाने का मतलब क्या है, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। वो बच्चों को स्नान करा करके फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनका क्या नहीं बच्चे का श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो उस रूप में नहीं, शिव बाबा आकर के कोई कपड़े नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है, कैसे श्रृंगार कराते हैं हमारा, इसको कहा जाता है योग बल। योग बल, ज्ञान बल, इससे हमारा श्रृंगार होता है, गुलगुल बन जाते हैं। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं भगवान। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम ये बनेंगे, ये हम बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। अब ये है नई बात, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं। शिक्षक है तो शिक्षा दे करके हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापिस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर तो राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। छोटे बच्चों को ऐसे ही सिखाते ना, आत्मा कहाँ है, शिव बाबा कहाँ है, तो ऊपर, हाँ शिव बाबा परम धाम में, तो वो झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, जब पूछे रावण कहाँ रहते हैं तो क्या जवाब देंगे? रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, रावण कहाँ रहते हैं तो कहेंगे पता नहीं। अगर छोटे बच्चे को, अब ये तो सिखाया नहीं रावण का, बस बाबा का तो सिखा लिया कि वो परम धाम में रहते, पर रावण कहाँ रहते ये तो बताया नहीं। तो बच्चे से पूछो, अच्छा बच्चे रावण कहाँ रहता है, कहते पता नहीं, लेकिन हमें पता है ना रावण कहाँ है, हरे के अंदर है, तो रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि रावण भी परम धाम में रहते हैं, रावण परम धाम में नहीं रहते हैं, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे रावण भी परम धाम में रहते, नहीं, उनका जैसे ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? रावण को तो हम याद नहीं करते, पर वो भटकाता है क्या? क्यों नहीं करते? क्योंकि भटकाता है, दुख देता है, नहीं, तो रावण को याद नहीं करती हो। कितना तुमको भटकाते हैं, शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो, तो बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए, इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बड़ा बाबा है ना, शिव बाबा बड़ा बाबा है, और ये छोटा बाबा, शिव बाबा की भेंट में ना छोटा बाबा, तो बड़ा बाबा है ना, वो आत्माओं से बच्चे बच्चे के बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में है तुम रूहानी बच्चे। हमारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में है तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से, इसलिए रूहानी कहते हैं। तो मूल वतन से कनेक्शन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग होती है अपना अपना पाठ बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो कितना बहुकाल हिसाब चाहिए ना। वो बाप बैठ बतलाते हैं क्या हिसाब है, कितना काल अलग रहे, 5000 साल। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबर वार है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अभी, वो पहले पहले घर जाएंगे, फिर वही पहले पहले आएंगे, पहले पहले बाबा से जुदा होंगे। तो वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे, सब उनके लिए पहले पहले। तो बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता है, और गुह्य से और उत्तम एकदम सीक्रेट। हाँ, एकदम सीक्रेट, तो उससे गुह्य, गुह्य तो सीक्रेट है, किसी को पता नहीं, पर उनसे भी गुह्य है, उसको क्या शब्द देंगे, गुह्यतम, और भी ज्यादा गुह्य, गुह्यतम भी कहा जाता है। ये तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं, और सबसे पहले अपने लिए क्या कहते हैं, मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। ऊपर से नीचे आते हैं, फिर कहते हैं मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है ना, और फिर बाकी तो सब सोए पड़े, तुम बच्चे जागे हो अभी, तुम कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोए हो, बाकी तो सब सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद में। तुम भी, हाँ बाबा कहते, तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर के जगाया है, बच्चों जागो, तुम गाफिल हो गए। गाफिल माना अलवेले हो गए, पता ही नहीं, गाफिल तो अनजान हो गए, गाफिल बन गए, गाफिल बनकर सोए पड़े हो, इसको कुछ आगे पीछे की कोई सुध-बुध नहीं, क्या करना है कुछ पता नहीं, बस सो गया, तो उसको गाफिल कहेंगे, अलबेले हो गए, तो सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वो नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं, देवताएं भी तो सोते तो होंगे ना, तो वो नींद तो सब करते हैं, देवताएं भी करते हैं। अभी सब है अज्ञान की नींद में, बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, कैसे पता चलता है जागे हो? अब तुम जागे हो क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न ये शरीर काम कर रहा है, तमो प्रधान हो गया, न शरीर रोगी हो गया, तो न शरीर काम कर रहा है न आत्मा, दोनों ही पतित बन पड़े हैं। आत्मा भी कोई जैसे काम की नहीं, मुलमा हो गई है, वो सोना तो खत्म हो गया, दोनों पतित बन पड़े हैं। एकदम मुलमे का है, 9 कैरेट गोल्ड मुश्किल से रहा है, वो काला पड़ जाता है ना, तो 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना तो 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिकर भीतर की चिड़िया कहेंगे, ठिकर भीतर की चिड़िया बन गई है, जैसे पत्थर के टुकड़े और मिट्टी के टुकड़े ऐसी हो गई है, बाबा कहते हैं भारत की स्थिति। तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिकर भीतर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, आत्मा तो है तो चैतन्य ना, वो ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी अब तुम समझते हो। कहते भी हैं चमकता है सितारा, क्या समझते आत्मा को? वो चमकता हुआ एक सितारा है, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते आत्मा को। क्यों नहीं देख सकते? इन आंखों से, क्योंकि ये आंखें तो चर्म चक्षु है, प्रकृति की आंखें हैं, तो प्रकृति की आंखें जो चीज प्रकृति की नहीं है उसको कैसे देख सकती आंखें? तो बाबा कहते हैं परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं हम जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई, जैसे 9 द्वार बताते हैं शरीर के कि कहां से वो आत्मा निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहां है? चलो निकल गई पर जाती कहां है? दूसरे तन में जाकर के प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, अंतिम जन्म है, आत्मा शरीर छोड़ेगी तो ऊपर चली जाएगी शांति धाम। ये पक्का मालूम है कि बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरे तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं, वंडर है, किस बात का वंडर है? संगम पर खड़े हैं तो किस बात का वंडर है कि यहाँ करोड़ों मनुष्य है, गिनती से बाहर जा रहे हैं, 600 करोड़ पहले कहते थे, फिर 700 करोड़, अभी 800 करोड़ भी कह रहे हैं, तो यहाँ तो करोड़ों मनुष्य है और सतयुग में सिर्फ 9 लाख बस, आदि में तो केवल 9 लाख। तो बाबा कहते हैं हम वंडर है ना, बीच में खड़े हैं संगम पर, यहाँ इतनी जनसंख्या और वहाँ इतनी थोड़ी जनसंख्या होगी, और सतयुग में सिर्फ 9 लाख, बाकी सबका क्या होगा? क्या होगा बाकी सबका? विनाश हो जाता है। बाप आते ही है नई दुनिया की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं कि 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, विष्णु की 4 भुजाएं ये 2 रूप है लक्ष्मी नारायण के, इनके द्वारा पालना होती है, बाकी ऐसे तो नहीं है कि विष्णु ऐसे है मनुष्य जो जिसके जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है, शोभा कैसे होगी, चार भुजाओं से कैसे चलेगा, दो भुजाएं बहुत है, चार भुजाओं से चाहे कौन से भुजा से क्या करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं, चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, श्री अर्थात श्रेष्ठ, त्रेता में दो कला कम हो जाती है। तो बच्चों को ये जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। खाली ऐसे नहीं नॉलेज सुनी और दूसरे कान से निकल गए, इसकी स्मृति में रहना है, फिर इसका स्वरूप बनना है, तभी समर्थि आएगी। इसको इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही दो अक्षर अलफ और बे, मुझे याद करो और राजधानी को याद करो। दूसरे कोई की समझ में ये बातें नहीं आएगी। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है, गाते भी हैं बाबा, आत्माएं क्या गाती है, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं दी हो, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सब कुछ बाबा दे देते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया है। अब तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, थे फिर बनना है संपूर्ण निर्विकारी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी बनेंगे। ये भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, फिर निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ कितनी बार बजाया है, बाबा कहते अनगिनत बार बजाया है, अनगिनत बार, गिनती से बाहर, कोई गिनती कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं गिनती कर सकते हैं, हाँ एक बार रमेश भाई ने ये मिसाल दिया था, तो उसने मम्मा से पूछा कि मम्मा कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना, शुरू में तो रमेश भाई नए नए थे, तो मम्मा से उनकी बहुत अच्छी लेन देन होती थी, तो मम्मा कभी तो शुरू हुआ होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि गिनती नहीं है, कभी तो शुरू हुआ होगा। तो मम्मा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया उनको, समझो 50 बार रिपीट हुआ है, 50 साल 50 बार रिपीट होने से पहले नहीं था, चलो 50 बार रिपीट हुआ, अब हमने कहा 50 बार रिपीट हुआ, फिर अगले कल्प में क्या कहेंगे, 51वां बार रिपीट हुआ, तो ड्रामा बदल जाएगा है ना, क्योंकि नंबर बदल गया। तो इसीलिए ड्रामा तो हू बहू है, तो इसीलिए ये कह ही नहीं सकते कितनी बार। तो देखो कितनी अच्छी बात है, ये 51 तो नहीं कहेंगे ना, उस समय फिर 50 ही कहेंगे, तो कितनी बार रिपीट हुआ। तो बाबा कहते हैं उसकी गिनती नहीं कर सकते। अब आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं, जनसंख्या दुनिया की गिनती कर लेते हैं, अभी तो क्या कहते हैं जानवरों की भी जनसंख्या गिनती करनी है, कहाँ जानवरों की जनसंख्या गिनती करेंगे, परंतु वो भी करते हैं, मच्छरों की जनसंख्या क्या गिनती करेंगे, अनगिनत होंगे। तो आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं, बाकी ये जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इसका हिसाब तो नहीं निकाल सकते कि कितनी बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है, ये तो ठीक है, लाखों वर्ष की तो बात याद भी रह न सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इन आँखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, और तीसरे नेत्र से फिर किसको देखते हो, घर को देखते हो, स्वर्ग को देखते हो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिला है, अब इन आँखों से तो तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है, कलयुगी दुनिया कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। एक फर्क क्या बताया बाबा ने अभी, करोड़ों मनुष्य और सतयुग में केवल 9 लाख है, तो कितना फर्क है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते ये बने हैं, वर्तमान स्थिति ये बने हैं। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए, केवल खुद तक याद नहीं रखना चाहिए, फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु का भी फर्क देखते हो ना, क्या फर्क है। विष्णु कैसा सजा सजाया है, क्या सजा सजाया विष्णु, तो बाबा कहते हैं वो सजा सजाया है। और ये ब्रह्मा कैसा साधारण बैठा है, विष्णु को तो खड़ा हुआ दिखाते ना, पर सजा सजाया, क्योंकि वो साक्षात्कार रूप हो जाता है और ब्रह्मा तो तपस्या रूप है। और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है, तुम जानते हो ये ब्रह्मा वो विष्णु बनने वाला है। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है, पहले पहले बच्चों को ये सिखाते थे, छोटे बच्चों को, ब्रह्मा हमारा बाप है, विष्णु हमारा चाचा है और शंकर हमारा ताया है। अभी तो हम जानते ना, तो ऐसे बच्चों को सिखाते थे वो बड़ा भाई है शंकर, लेकिन बाबा कहते नहीं, बड़ा भाई कौन है, बड़ा कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे बड़ा क्योंकि रचयिता है, शंकर तो विनाशकारी है, फिर वो शिव के साथ मिला दिया इसीलिए महादेव कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है। तुम जानते हो ये विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, यही विष्णु देवता सो फिर मनुष्य ब्रह्मा बनता है। विष्णु देवता फिर मनुष्य ब्रह्मा बनता है। वो विष्णु तो सतयुग का है और ब्रह्मा यहाँ का है, संगम का। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनना कितनी देर लगती है, ब्रह्मा से विष्णु बनना 1 सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। 1 सेकंड में कैसे ब्रह्मा से विष्णु, बस विष्णु का साक्षात्कार हुआ और उनको विष्णु ने वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जैसे मैं विष्णु हूँ तुम भी हो, तो 1 सेकंड में जैसे बाबा को इतना नशा चढ़ गया मैं भी विष्णु, तो ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना समय लगा, 1 सेकंड। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया ब्रह्मा से विष्णु बनना 1 सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्त्वम, तुमको भी ऐसे ही लगते हैं, केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना, ब्रह्मा से विष्णु तुम बच्चे भी बनते हो, तो केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की तो बात ही नहीं है, यहाँ कोई गुरुडम नहीं है। कई कहते हैं ना भाई हमको आपके गुरु से मिलना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ तो गुरु की तो बात ही नहीं है। इनका भी गुरु शिव बाबा, ब्रह्मा हमारा गुरु नहीं है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा का भी गुरु शिव बाबा है। तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है, उनको सतगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है, समझाना मुश्किल नहीं है। क्या सहज है कि शिव बाबा को याद करो, ये समझाना मुश्किल नहीं है। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं, तो ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, वो हम आत्माओं का बाबा है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं, क्या के कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है, बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उनके मुख से आप ही निकलता है। हाँ, मम्मा मम्मा पहला शब्द ही बोलेगा, फिर पापा पापा, फिर दूसरा शब्द बोलेगा। तो माँ बाप को तो जैसे थोड़ा ही आवाज मुख से निकला तो पहला शब्द क्या बोलेगा, मम्मा पापा। तो बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उनके मुख से आप ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास जाएगा भी नहीं, माँ के पास ही जाएगा। और माँ सामने नहीं होती तो रोने लगता है, और जैसे माँ सामने आई तो चुप हो जाता है और माँ के पास चला जाता है। परंतु अगर माँ मर जाती है वो फिर और बात है। वो मर गई माँ, कई बार होता है बच्चे ने जन्म लिया और माँ मर गई, तो बेचारे को बच्चे को माँ का सुख नहीं मिलता है। तो परंतु बाबा कहते हैं वो फिर और बात है। पहले है माँ, और पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी, और मित्र संबंधी में भी जोड़ी जोड़ी होगी ना, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, है ना। तो मराठी में इसका भी एक गीत है, हा मामा आला, मामी आली, चाचा आली, ऐसे गीत है ना। तो बाबा कहते हैं तो उसमें जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची तो दो है ना, कुमारी होगी फिर बड़ी होती है, होते ही कोई चाची कहेंगे कोई मामी कहेंगे। शादी हुई उसकी तो वो चाची बन जाती है या किसकी मामी हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो। अभी और मामा चाचा काका बाबा कहते अब ये संबंध भूलो, तुम सब भाई भाई हो। तो हमने देखा जब हमारी दादियां यज्ञ में समर्पित हुई 14 साल, लौकिक संबंध क्या होता है ये किसी को पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। मम्मा की लौकिक माँ, अब वो भी मम्मा को मम्मा कहे, है उसकी बेटी लेकिन बेटी को मम्मा कहती थी। तो देखो कितने लौकिक संबंधी सा परिवार के परिवार समर्पित हुए, लेकिन ये किसी को पता होने नहीं दिया कि ये मेरा लौकिक युगल है या ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। बिल्कुल देह के संबंधों से न्यारे। फिर जब सेवा में आए तो फिर उनसे पूछते कि दादी ये फलानी आपकी क्या लगती थी, कहती छोड़ो छोड़ो ऐसे ऐसे करती थी, अभी क्या दूर का संबंध मुझे तो याद भी नहीं है। तो लौकिक संबंधों को इतना भूल गई जो बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको बाप समझाते, तुम सब भाई भाई हो, बस एक ही संबंध हमें याद है, भाई भाई बस, और सब संबंध कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे, अब यही युक्ति है। भाई भाई समझने से एक बाप याद आएगा, अब मामा चाचा काका याद करेंगे तो भाई, तो फिर बाबा कैसे याद आएगा। तो भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझ एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है वो बड़ा बाबा, तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं, हाँ वो बेहद का बाप घड़ी घड़ी क्या कहते हैं, मन मना भाव, मुझे याद करो मुझे याद करो। तो किसी ने कहा बाबा ऐसे क्यों बार बार कहते हैं, हमें पता है ना हमको शिव बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा भले पता है लेकिन भूल जाते हो, इसलिए बाबा को याद कराना पड़ता है, माँ में कम याद करो मन मना भाव, क्योंकि भूल जाते हो। और जब तक आप भूलते रहेंगे बाबा याद दिलाते रहेंगे, और जब तुम अभूल बन जाएंगे तब पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो देखो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बात भूलो मत। दे अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। तो पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वो भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर घुटका खाया है ना, ऐसे नाक पकड़ करके वो टुपकी लगाते हैं। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है पानी की गंगा में, लेकिन पावन तो बन न सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। हाँ, सबने गंगा स्नान किया है। जो हरिद्वार में जाकर हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया है वो हाथ उठाए। अच्छा, इतनों ने किया है। चलो बहुत अच्छा, तो बाकियों ने नहीं किया है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। हम भी बहुत, मुझे भी याद है, मैं 5 साल की थी तब, मदर मेरी ले गई थी गंगा पर। तो उस समय मुझे कहा तुम टुक्की लगाओ। तो कैसे लगाऊं, डर लगा बहुत पहली बार। तो माँ ने मुझे पकड़ के ऐसे ऐसे डाला, वो भी मुझे याद है। और फिर कहा ऐसे, हाँ आप नाक पकड़ के कहो। तो किया जरूर, लेकिन मैं डर गई बहुत। और ऐसे जैसे अंदर चली गई, अब हाथों से गिर माना हाथ वो उसके मम्मा के छूट गए। तो मैं तो अंदर घबराई, लेकिन कैसे बाबा ने मुझे बचाया, कोई आया और उसने मुझे निकाला और मैं बच गई। अब वो माँ भी सोचे किसने इनको ऐसे निकाला, पता ही नहीं कौन आया जो मुझे गंगा से निकाला और मैं और वहां पर लाया, मतलब बाहर लाया। तो हम तो कहेंगे ना बाबा नहीं लाया, तो वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। तो बाबा कहते हैं हाँ अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। कहाँ गए, पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर घुटका खाया है लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? तो ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सदगति होती है। ये देवताएं सदगति में है ना, बाप ने समझाया है। ये बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो बरोबर है ना, बाबा कैसे जादूगर है? पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं, नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी हैं, फिर हेवन के रहवासी बनेंगे। हेल और हेवन अलग अलग है, नर्क और स्वर्ग अलग अलग है, अलग समय पर है तो भले इसी सृष्टि पर अलग अलग है। हेल और हेवन अलग है। 5,000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवानो वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है, जो बताएगा ये सारी बातें। जो चक्र में आता है उसको तो पता ही नहीं है, जो चक्र से बाहर है जरूर वो पुनर्जन्म जो रहित है वही बताएगा ये सारी बातें। जरूर कोई पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए शिव को। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना, ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज उनके पास है। वो सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं कि फिर से वो वर्षा देवे सुख शांति का। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति से देते हैं, यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, कहाँ भी याद करो, कहाँ भी बैठो याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मनाव हो ही है। कैसे देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना, फिर ब्राह्मण बनाओ, फिर देवता बनूंगा, बाबा कहते ये भी मन मना भाव है, क्योंकि कौन बनाएगा फिर शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, बाबा बनाएगा तो बाबा भी उसमें याद आ जाएगा, तो ये भी मन मना भाव है। बाप ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं, यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, आगे चलकर क्या होगा, तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। अभी तो थोड़ा आकर्षण है इस कलयुगी दुनिया का, पर आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, अभी हम जा रहे हैं वैकुंठ में जा रहे हैं। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी, यज्ञ के अंदर ऐसे होता था, वो बच्चियां जो, वो तो बाबा ने स्कूल खोला था ना, ओम निवास उसका नाम रखा था, जहाँ लड़कियों की का स्कूल था, तो वहां पर बाबा उनको तो उनको भी सिखाते थे, तो वो आपस में बैठती थी, आपस में एक दो को दृष्टि देती थी और दृष्टि देते देते वतन में चली जाती थी, साक्षात्कार करती थी, स्वर्ग देखती थी। तो बाबा कहते हैं तो शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी, ये देखकर बड़े बड़े घर वाले भी अपने बच्चों को भेज देते थे, क्योंकि स्कूल में दाखिल कराते थे बड़े बड़े घर वाले उन बच्चों को, और फिर वो जाते थे और बच्चियां साक्षात्कार करती थी, तो अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास, हाँ ये हैदराबाद सिंध में ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ, फिर बाबा ने उन सबको क्या कहा, अभी तुमको पवित्र और योगी बनना है। अब वो छोटे छोटे बच्चे सबको कहा, ये सबसे प्रतिज्ञा करवाई, तुमको पवित्र और योगी बनना है। अब ये जब उनके घर वालों ने सुना, माँ बाप ने सुना, इतनी छोटी बच्चियां और इनसे प्रतिज्ञा करवाई अभी हम पवित्र और योगी बनेंगे, तो बहुत विरोध हुआ, तो विरोध वहीं से शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं अभी कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ, बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चली जाती थी, अभी ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है, यहाँ भी कब्रिस्तान बनाते थे। जब माउंट आबू में आए तो माउंट आबू में ये बाबा की पहाड़ी पर जाते थे, तो उस समय तो बेगरी पाठ था, तो माउंट तो पहाड़ी पर जाते थे, तो वो तो कंदमूल खाते थे तो वही नाश्ता हो जाता था, लेकिन बाबा की पहाड़ी पर बाबा उनको लिटाते थे, बाबा मम्मा दोनों होते थे, और वो सब लेट जाते थे, तो उसको कब्रिस्तान कहते थे। फिर मम्मा दृष्टि देती थी, बाबा दृष्टि देते थे, और वो लेटी रहती थी और बाबा से दृष्टि लेती थी, और लेते लेते ध्यान में चली जाती थी, और फिर वो उठ करके फिर साक्षात्कार करती थी, फिर डर लगता था कहीं गिर न जाए, कहाँ कहाँ चली जाएगी, फिर उनको पकड़ते थे, फिर वो साक्षात्कार से नीचे लाते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, फिर ध्यान में चली जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वो झट ध्यान में चले जाएंगे। अंत में ये भी सीन आएगी, अभी तो बहुत आते हैं, दीदी दृष्टि दो, दृष्टि दो, दृष्टि दो, अब अंत में क्या होगा, जैसे दृष्टि देंगे वो ध्यान में चले जाएंगे। बाबा से तो ऐसे ही दृष्टि लेते लेते ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा कहते हैं किसको भी देखेंगे और वो झट ध्यान में चले जाएंगे, ये जादू कितना अच्छा है, दृष्टि दो और ध्यान में चला जाए। नौधा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है, वो ना काशी करवट खाते में प्राण दे दूंगा तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, आगे चल तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वो कैसे दिन होंगे, बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बाप बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है, कौन टूह है। टूह भी एक फूल होता है, बड़े बड़े होते हैं टांगर और टूह, ये बड़े बड़े फूल होते हैं, तो ये अलग अलग नाम है। तो फूल, गुलाब का फूल तो बड़ा सुंदर होता है, फिर चंपा का फूल तो देखते ना, यहाँ गर्मी के दिनों में चंपा का फूल निकलता है पीला पीला, बहुत सुगंधित होता है। तो फिर बाबा कहते हैं कोई टांगर भी है, टू भी होता है, तो ये टांगर टू ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है ये निश्चय करना है, और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है, सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है, लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। प्रभु के प्यार का पात्र कब बनेंगे, जब कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा 30 तारीख, तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नयन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। तपस्या का अर्थ है संतुष्टता की पर्सनालिटी नयन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। हाँ, यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। आज के लिए कैसे सकाश दें, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो उसके लिए स्वमान है, मैं मास्टर ऑल माइटी हूँ, सकाश दाता हूँ। योग अभ्यास क्या करो, मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बन मनसा वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में निर्बल में बल भरने और आत्माओं को सकाश देकर उन्हें संपन्न और संपूर्ण बनने में मददगार बन रहा हूँ। और धारणा क्या करो, बलवान आत्मा की निशानियां जीवन में दिखाई दे। और चिंतन क्या करो, विघ्नों की लहर आती है तो उस समय क्या करना चाहिए, विघ्न आते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, इसका चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। और नीचे आज भी बहुत आए हैं, नीचे से जो नीचे से आए हैं हाथ उठाएं, देखो कितने आए। सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के भाग कर आते हैं पांडव भवन मुरली सुनने, बहुत अच्छा। चलो बाबा को याद करेंगे।